व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वे महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पिनाकधारी शिव ने उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने किया था शंभु की जटर रग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन, बुद्धिमान शुक्र भी तो कलापंतिन कलीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, वे शंभु और जेठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कैसे काल तक आराधना की थी? उन्हें तो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वे विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुनि, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल छूटे हुए अंधक को गणाधिक्षता की प्राप्ति हुई और मुझे शिवली रत्मत और श्रवण करने वाली विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत मुझे पूर्ण रूप से समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके और कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, जब भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में आ गए और उसने गिड़गिड़ा कर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो युद्ध स्थल में गए आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। इस विद्या का प्रयोग ही वे सभी दैत्य दानव वीर और साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो, जैसे पूर्णतया अभस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ हो, धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो गया जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथम वेजेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ, दैत्यों के बीच से दुःश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। शरद कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभ ध्वज के ये कहने पर नंदी साढ़ के समान बड़े जोर से गर्जे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ भृंगु वश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़क, वक्ष और पत्थर और पर्वत खंड लिए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्य को शुक्राचार्य से अपहरण कर लिया, जिसे शरभ हाथी को उठा ले जाते हैं। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़ते हुए, जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बैरठी, गोफान आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गाणी धराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुन बंधन को दपोच कर शत्रुदल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए गए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे फल की तरह मुंह में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी कहते हैं, जब गिरिराज ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूर्ण रहित, गजराज सिंह रहित सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उदम दीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल जिस बाण पुण्य रहे आयु के व्रत रहित समान हो गई थी। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक के महान दुख प्रकट करते हुए शूरवीरों को बड़ा उत्साहित हुआ और कहा, वीरों, जो रणगण छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में परलोक में नहीं कुछ सुख मिलता। यदि पुनर्जूपी और मूल करण का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रणतीर्थ में आवागान कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात इनका फल रणभूमि में पाणत्याग और करने से क्या प्राप्त होता है? दैत्यराज ने इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्होंने बथने लगे तथा बाण खड़क वज्र सीखने से और मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक स्कंद नंदी, सोम नंदी और वीरमय महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों के द्वारा असुरों की सेनाओं में महान कोहाकल मच गया और वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर पताल सहित सातों लोक ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमानुसार संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा। जैसे दुष्ट की दुष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंद ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप से लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकलता हुआ देख मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, तो मेरे पुत्र हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर ने कहने पर सूर्य के सिद्ध कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान आपके पैर, सिर और नेत्र आदि भुजाएं अत्यंत है, आपकी मूर्तियों की गणना भी करना असुरूप है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों के सेना में प्रविष्ट हुए और उसी तरह चंद्रमा मेघों की घाट में प्रवेश करते रहे। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निकल गया वह वृतांत तुम्हें सुना दिया है। अब शंभु ने उदर में शुक्र में जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन करो। महर्षि, वे मंत्र का यह उच्चारण है, ओम नमस्ते देवेशाय, सुसुराय नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय नमः। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक शूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक के प्रसन्न हुए चंद्रशेखर अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष प्राप्त हुआ था, वह सारा सारा का सारा पुरुतांत वृतांत मैंने सुना दिया है और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र का मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामना का फल देने वाला है, इसे परिपूर्वक जपना चाहिए।